ऐसा प्रमाण नहीं है जो पाया कि वन छंदी यहाँ इसमें कहा है। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, इसलिए मनुष्य जीव के लिए यदि यरस मिल गया, यदि कथा रसस्य इस कथा में रस उनको मिला तो ब्राह्मण इत्यादि जन्म की कोई भी आशा। ब्राह्मण माने यहाँ पर त्रिजन्म के लिए का जन्म, मैंने शौक्र और दक्ष, इन जन्मों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ जो है वहीं से ये लाभ कर सकता है। यदि हरि कथाओं में रस हुआ, उन रसिक और भाव भक्तों का यदि संग मिल गया तो, और यदि नहीं मिला तो नहीं मिला, अथवा यदि मिल नहीं मिला तो फिर ब्राह्मण जन्म इत्यादि की या ब्रह्मा होने की भी क्या आवश्यकता है, बेकार का वो है। आराधितो तो यदि हरि तपसा तथा कि यदि भगवान की आराधना यदि हो गई तो आराध तो तपस्या की आवश्यकता। नाराजितो तो यदि हरि, यदि हरि की आराधना नहीं तो तपस्या क्या कर लेगा। ऐसे यदि ब्राह्मण इत्यादि हो गए, ब्रह्मा भी हो गए और प्रेम का रस स्वादन नहीं मिला तो उनका जन्म बेकार है। और यदि यदि वो मिल गया तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है। वही कह रहे हैं यदि इस ऐसे रस कथा में, कथा रूपी रस में यदि थोड़ी सी लालसा लोभ उत्पन्न हो गया तो जीवन सार्थक, और अन्यथा ब्राह्मण जन्म लेकर के भी कोई भी आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी बन करके कोई भी लाभ, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो कहते हैं ना तदभूरी भाग्यमी जन्म तुम अटक जन्म इत्यादि उन्होंने कहा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म जन्म भी कोई आवश्यक, इसलिए यहाँ पर करें ब्रह्मा उद्धव और दूसरे लोगों को भी गोपियों के इन रूढ़ावों को देख करके लोग उत्पन्न हो जाता है, पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो पीछे की बात है, अंत तो लोग हो जाए। इसलिए भाव होने पर इन कथाओं के प्रति उनको भी रस आने लगता है, इसलिए वो लोग और सब लोगों से श्रेष्ठ हो जाते हैं उन भावों की कामना। आगे
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
रूपं तस्य राधाकुन्दं केवलमो राधिका माधुभाषां परिपक्वावस्था उपस्थित हो जाती है तब उसकी उस स्थिति को देख करके, भावों को देखकर ब्रह्मा इत्यादि को, उद्धव को भी और सब लोगों को शोक होता है, जो मैंने पाने की लालसा उसी को दिखलाया है। वन छंति जब भाव वन छंति वंछा करते हैं किंतु
नहीं पा,
अभी तक तो मिला नहीं, और निकलात्म निरूढ़ भाव रूढ़ भाव क्या मैंने अरे कौन है निखिल रूढ़ भाव की व्याख्या हमने कुछ वो केवल गोपियों में ही रूढ़ भाव है, इसके लिए कल हमने व्याख्या तो गोपियों में वो अभिभाव दूसरी जगह में, इसलिए उनको देख करके ब्रह्मा इत्यादि में भी और लोग उद्धव में भी उसको प्राप्ति होने की लालसा। पृष्ठ रति पशुलभम, पृष्ठ ही मैंने ये महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है, उसकी यदि कृपा पड़ गई तो उनकी कृपा से ऐसी भावमयी भक्ति होती है जो पृष्ठ ही मैंने नारद जैसे पृष्ठ लोग हैं
जो उनका सूख नारद
ब्रह्मास्त्र नहीं नारद नारद है पृष्ठ। ब्रह्मा जी कभी वृद्धि नहीं जाते, उनको मूर्ख के प्रति कुछ भी ऐसा भाव नहीं। नारद जी को वो ये पूछ रहा था जब ब्रह्मा जी को नहीं हुआ तो हम लोग को कैसे हो। ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना नारद,
नारद जी कैसे हो गए।
और नारद जी दासी के पुत्र, ब्रह्मा जी का काट दो, ब्रह्मा जी के पुत्र न होकर के दासी पुत्र। तो इस दासी पुत्र को जो हो गया वो ब्रह्मा जी को नहीं, जैसा क्यों हो सकता। भगवान की कृपा ही ऐसी है। तो कल हमने इसके विषय में बतलाया कि भगवान की कथा ही ऐसी है, वो भाव ही ऐसे हैं, जिसको वो भाव हो जाता है फिर उनको ये लालसा ऐसी होती है जो और सब लोगों के लिए संभव है। ऐसे भाव भक्त ही ये सब में लोगों का होगा, लोग होने से उनके अंदर में वैसे ही भाव है। इसलिए कहते हैं भवतीत मुनिगण आर देवगण जहाँ चरण वंचा करें अनुखान से गोविंद रूढ़ भावापन्न गोपीधन से गोविंदे रूढ़ भावापन्न गोपी गुणधन कृष्ण रस आगे ब्रह्मजन जन्म नहीं गण। ब्रह्मा के जन्म होने की भी कोई गिनती नहीं रखती, ऐसा वो भाव। यही छठा जन्म का भजन है। अंत में कहते हैं जो ऐश्वर्य प्रिय जो भक्त हैं उनको भी गोपी भाव की लालसा उत्पन्न हो जाती है। लालसा उत्पन्न होती है कि नहीं वो सब पीछे की बात है, किंतु ऐसा जो भाव है रूढ़ भाव ऐश्वर्य प्रिय भक्त जो हैं उनको भी। ऐश्वर्य प्रिय क्यों कौन है, मथुरा की कुमार की राजाओं की पत्नी है रमणी, माथुर रमणी। कब जब कृष्ण वहां पर गए रंगस्थली में और चारों मस्तिष्क से उनको युद्ध होने की तैयारी हो रही थी, उस समय उन्होंने कहा कि इस सभा को अधर्म लग गया, यहाँ पर धर्म को कराना उचित नहीं है, नहीं तो पाप स्पर्श करना। और उस समय में गोपियों के सौभाग्य का वो वर्णन कर रहे हैं, गोप्य तपत किमाचरण जमग्नुष्म रूप लावण्य सार असमोध्वानन्य सिद्धम दृग्धि पिबन तनुषवाभिनवम दुराप एकांक धाम जसस मथुरा में ऐश्वर्य भाव नहीं तो ऐश्वर्य भाव मैंने उनको भगवान जाने, कृष्ण को साधारण नहीं जाने भगवान भी जाने। तब द्वारका से ऐश्वर्य यहाँ अनुभूति अधिक होने पर अनुभूति कुछ कम है, ऐश्वर्य वहाँ पर अधिक अनुभूति होता है द्वारका, और वहाँ से ऐश्वर्य कम अनुभूति होती है मथुरा में और मथुरा से कम किंतु है ऐश्वर्य अधिक। इसलिए कहते हैं ऐश्वर्य प्रिय जो भक्त हैं मथुरा के रहने वाली भी वो कह रही हैं कृष्ण को रंगस्थली में देखी और चारों मूर्ति से लड़ते हुए देखा तो वो कह रहे हैं गोप्य तपत की मचारण जमक मुश्कर
जब अमुष्ण अमुष्ण माने कि वो जो कृष्ण है जो लड़ रहा है हाथ से दिखला कर अमुष्ण माने वह और यह अंगीय सब यह दिया गया अत्यंत जब युद्ध हो रहा है तो थोड़ा सा दूर नहीं इसलिए अमुष्ण रूप उस अमुष्य रूप को उस रूप को कृष्ण कैसा रूप लावण्य सार असमोनंद सिद्धम लावण्य का सार लावण्य सब सौंदर्य का सार और उसका सार और लावण्य का सार और असमोर्थ असमोर्थ जिनके समान भी कोई रूप नहीं है और जिनसे बड़ा भी नहीं है इसका दूसरा शब्द क्या असमोर्थ और कोई दूसरा साम्य
न साम्याति असाम्याति सर
साम्य भी नहीं है अतिशय भी ऐसा जो रूप है और कैसा है अनन्य सिद्धम दूसरे के द्वारा वो रूप
सिद्ध नहीं हुआ है
वो सिद्ध नहीं स्वयं सिद्ध है किसी आभूषण के द्वारा किसी और के द्वारा ऐसा अनन्य सिद्धम उस रूप को गृग्भी पिबंत्य अनुसवा नवम पुरा आंखों से उसको पी रही है कौन पी रही है गोपियां इसलिए उन्होंने न जाने कौन सा तप किया था कि उस रूप को रस के रूप में पी रही है कैसे पी रही है आंखों से पी रही है मुख से नहीं इवन अनुस्वादिनम जैसे मदिरा पान किया जाता है 800 मदिरा ऐसे ये पान कर रही हैं प्रमत्त हो रही हैं उस समय लज्जा इत्यादि उनकी छूट जाती है कौन देखता है कि नहीं ऐसा नहीं और पुरात मैंने अत्यंत दुर्लभ किसी के लिए सुलभ नहीं है बस गोपियों के लिए सुलभ है ऐसा एकांत धाम जसस श्रीय ऐश्वर्य यद्यपि जस श्री ऐश्वर्य तीन दिया किंतु इसका अर्थ है 6 समग्र ऐश्वर्य भी जस श्री ज्ञान वैराग्य 6 के जो चरम सीमा है वो कृष्ण है एकांत धाम उसके हैं और उस रूप को गोपियां मदिरा की भांति मध्य की भांति वो पान कर रही हैं अपनी किसी को भी सुना चलवती ठाकुर जी अपनी भाषा में टीका करते हुए देते हैं हंत हंत बड़े प्रसन्न होकर के अरे मरी ऐसे कर ये वृंदावन भूमि वहां सुख संपन्न में ये भूमि और इस वृंदावन में भी महामधुर भूमि है सुकृति संपन्न और उसमें भी ये किस लिए वृंदावन भूमि ऐसे माधुर्यमय ये भूमि हुई गोपियों के अति श्रेष्ठ है अत्यंत श्रेष्ठ गोपियां हैं ब्रजभूमि का जीवन ये गोपियां कृष्ण को नहीं बतलाया कृष्ण तो मथुरा में भी है द्वारका में भी है किंतु यहाँ पर ब्रजभूमि में गोपियों के साथ वो होने से ही ऐसे हैं महापुरुष शुभ गुण अति श्रेष्ठ है इसलिए वृंदावन की जीवन स्वरूप ये गोपी है गोप्य अत्यंत गोपनीय है जैसे शरीर में प्राण गुप्त रहता है इस तरह से ये ब्रज की ये गोपनीय है आत्मा स्वरूप अथवा गोप्य कृष्ण को भी गुप्त रखती है अपने भावों को भी गुप्त रखने वाली है वाली
जैसे वेदांत में भी यही है कि कृष्ण को अपने भाव के द्वारा आच्छादित करते हैं।
उन्होंने किमाचरति ओ, ये गोपियां ऐसी हैं जो वृंदावन में धन्य हैं और वृंदावन को धन्य बनाती हैं और कृष्ण को भी गुप्त रखती हैं अपने भावों के द्वारा और वेदों में भी गोप्य है, स्वयं वेदों में भी गोप्य है, उपनिषदों में, भागवत में भी गोप्य है। तो ऐसी ये गोपियां हैं। इन लोगों ने किम आचरत, किम आचरण, उन लोगों ने क्या किया था, अर्थात कौन सी तपस्या की या कौन सा कार्य किया, दान पुण्य किया। यदि कोई जानता है तो, कोई ज्योतिषी किया है तो वो बतला दे तो हम लोग आज ही वो करने के लिए तैयार। ये कह रहा था
मतलब
का इतना सुंदर और ये उसको अपनी आंखों से पान करती हैं। यदि हम जान ले कि कौन सा तपस्या करके आचरण करके उन्होंने कृष्ण के इस मधुर रूप का भरोसा स्मरण किया तो हम आज ही आरम्भ कर दें और उनको हम पालें। सत्य तत्तप यदि यूयम सर्वज्ञ कश्चित मुखात ज्ञान, यदि किसी सर्वज्ञ के मुख से हम हो सके, हम यदि जान ले तो आज ही हम तपस्या आरम्भ कर दें। तो हम उस तपस्या को कर अपरा से कीर्तन ननुमल जी एक कीर्तन लगाइए। सखियों, यदि किसी सर्वज्ञ के द्वारा हम इस विषय को जान लें कि गोपियों ने कौन सा तप किया है जो माधुर्य की अंतिम सीमा वाले इस कृष्ण के रूप रूपी रस को ये गोपियों ने कैसे पान किया है तो हम भी वही करें, उसी शाम कृष्ण को पान कर सकते। अच्छा, सचमुच में ये कैसे होगा, कैसे कोई पान करे? ये गोपियां, जब तक गोपियों का भाव नहीं होगा तब तक कोई भी नहीं उसको इस रूप में पान कर सकता, इसलिए ये करेंगे। इसलिए कहते हैं कौन सा तप किया, हम भी वैसे ही पान कर लो। तो पान कर लो, कृष्ण तो खड़े हैं, क्यों नहीं पान होगा, बिना भाव के नहीं होगा, कृष्ण वही रहेंगे। तो ये कर रही है दूसरे रूप में, यहाँ पर कृष्ण को जो वो देख रही है यहाँ पर कृष्ण को क्या देख रही है, कृष्ण बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा आक्रांत हैं और उनको कभी नीचे गिरा दे और ये देख रही हैं जैसे इतने बड़े बड़े पहलवान ये कृष्ण को जरूर पराभूत कर रहे हैं। तो ये पराजय के सन्मुखी होकर के सन्मुख होकर के कृष्ण को ये का रूप देख रहे हैं। अभी न तभी ये कृष्ण को पछाड़ेंगे और कृष्ण उस समय में कुछ मुख क्रोध कर रहे हैं, क्रोध में मुख कब और अपने ऊपर के दांतों से होठ को
दबा रहे हैं,
पकड़ रखा है, कुछ क्रोध आ रहा है। बलदेव जी का भी वैसे ही और उनसे लड़ रहे हैं। इस समय में वो कुछ पराधीन है, किसके पराधीन है, लड़ने के लिए पराधीन, वैसे युद्ध में पराधीन नहीं, किंतु लड़ने के लिए वो पराधीन है, अधीन है उसके। और उस समय में उनको देख रहे हैं और गोपियां कैसे देखती हैं, सिंह का पन का सिंह है एक, थिएटर का सिंह एक होता होगा कि नहीं, खांचे में रखा हुआ जो सिंह है जो कि थिएटरों में आते हैं वो कैसे होते हैं? शिकंजों में बंद रहते हैं और वहां पर खड़े बड़ी दयनीय दृष्टि में देखते हैं वो। और सिंह जब जंगल में वो सिंह रहता है तो वो कैसा
नंदन का
कहीं भी कानून में वो एकदम भयंकर रूप में रहेगा, वो देखने लायक होता है। बहुत से दूर से देखकर कहीं लोगों का ये चित्त है कैसा होता है। ऐसे ये कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं ना, स्वतंत्र रूप में रहते हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए। यहाँ पर वृंदावन का खूब सुंदर रमणीय प्रदेश, जमुना जी भी वहां कल कल बह रहे, कृष्ण को देख करके मोर नाच रहे, मुनि के रूप में सब ये पक्षी इत्यादि सब उनको देख रहे, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, गोपियां उनको अपने आंखों से उनका अर्चन कर रहे हैं। गोपीनंद ने नोर इत्यादि ये सब रूप है। वो वृंदावन में ही हो सकता हो कहीं भी, यहाँ पर युद्ध करते हुए एक क्रोध के भाव में उनको हम देख रहे हैं। और यहाँ पर कृष्ण स्वच्छंद गति से उनको गोपियां प्रेम से उनको पान कर रही हैं। इसलिए यदि हम उनको पीना चाहती हैं उनके उस रूप को, तो हमें वृंदावन में जन्म लेना पड़ेगा गोपी के रूप, तभी उनको हम इस रूप में दे सकते, दूसरों के लिए संभव। तो हम अभी तपस्या करेंगे, गोपी बनेगी, गोपी होकर के तब ही वृंदावन में आकर के कृष्ण के स्वरूप को पान करना चाहती, इसलिए हम ऐसा आचरण करना चाहती हूँ। तदेव अस्मिन जन्म में, इसी जन्म में और विलंब नहीं, इसी जन्म में मैं ब्रजभूमौ गोप्यौ भवेम, गोपियां हम हुई एवं ततस ता अमुष्म रूपम सौंदर्यामृतिमंती, जैसे गोपियां उनका अमृत पीती हैं रूप का, वैसे हम भी उनको पान करें। मथुरास्था अश्य पराभव विषम पित्वा, यहाँ पर हम पराभूत होकर के कृष्ण को जो देख रहे हैं युद्ध से उनका ऐसा भाव, और हम भी यहाँ पर कैसे देख रहे हैं, हम भी पराभव, हम भी अधीन हैं, यहाँ पर हम उस रूप में नहीं देख सकते हैं स्वतंत्र रूप से, इसलिए हम लोग तब जल रहे हैं वो विष को देख। तासां दृग्धि पानस्य एव तादृश तपः फलम्, अब उन्होंने कौन सा तप किया, गोपियों ने कौन सा तप किया, अब गोपियां कौन सी है जो तप किया, गोपियां बहुत प्रकार की, जिसमें राधा जी जो गोपी हैं कौन तपस्या की,
तीन लोग कारण से तेरे
तो राधा जी ने कौन सा तपस्या किया, ये कल्पना कर सकते हैं राधा जी की तपस्या से वैसा नहीं होगा, वो कृष्ण की लादिनी शक्ति विलास के लिए उनसे पृथक हुई है, बस इसलिए उनकी कोई तपस्या की कल्पना मत करो। जहाँ तपस्या की बात आएगी तो वो सार्थक जीव के रूप में परिणत हो जाएगा, इसलिए तपस्या कोई भी तत्व को जानने वाला व्यक्ति ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा न ऐसी भावना में रहेगा। और उनके एक एक भाव ललिता विशाखा इत्यादि सहस्त्रों गोपी हैं, इसलिए उन लोगों के लिए भी तपस्या नहीं। अब तपस्या है किन के लिए, श्रुतियाँ जो वेद की के मंत्र हैं, ये वेद के मंत्र सर्वज्ञ हैं, और उन लोगों ने अपना रूप बना करके कृष्ण के रास में उपस्थित होकर के दूर से देखा, और देख करके गोपियों भाव को देख करके मोहित हो गए, और कृष्ण को उसी लालसा से पाने के लिए उन लोगों ने आराधना की, योग माया की या गोपाल मंत्र अथवा दोनों की आराधना, ये दोनों की आराधना करना होगा। एक दो जन्म नहीं, न जाने कितने कल्पों तक हम लोगों ने अभी तक कितने कल्प तक आराधना की। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से हमारा जन्म चल रहा है और अभी तक हो रहा है। अब इस जन्म में हम इतनी दूर आए, हम लोग एक ही साथ के हैं, जितने भी विश्व में जीव थे है ना, सभी एक साथ। इसमें कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया, ऐसा विषमता क्यों? अपने अपनी आराधना पर ये निर्भर, किसी को सुजोग ही भी नहीं मिला। हम लोग का इतना सुजोग मिला कि अभी मथुरा तक तो पहुँचे हैं, अब यहाँ से थोड़ी दूर वृंदावन यहाँ तक तो पहुँचे हैं। इसमें कोई कोई यहाँ आकर के भी वृंदावन के निकट अभी नहीं पहुँचे, जबकि श्रुतियों ने इतनी तपस्या की, कितने कल्पों तक, एक कल्प तक नहीं, न जाने कितनों कल्पों तक। और ये मुनि लोग, मुनिचरी, ये एक ही जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों का फल से वो त्रेता युग में दंडकारण्य में उनकी आराधना करते थे, बहुत उन्नत स्तर तक आए थे, भावावस्था तक अब आने वाले थे या हो गया था। भावावस्था माने स्वरूप सिद्धि, उनकी स्वरूप सिद्धि है किंतु वस्तु सिद्धि नहीं हुई और अभी उसके योग्य नहीं थे, किंतु रामचंद्र की कृपा से आराधना करते करते इन्हीं मंत्रों के द्वारा तब वो गोपियों के गर्भ से पैदा होकर के नित्य सिद्धाओं के संग में कृष्ण के इस रूप का वो रूप माना। इसलिए यदि किसी की लालसा होगी तो यही दो मंत्र हैं, इन्हीं दो मंत्रों के माध्यम से हम लोग आराधना करते करते न जाने कितने कल्पों में इसको पा सकते हैं। बड़ा किंतु इस लाइन में आने पर बहुत सी बात विघ्न बाधाएं होती हैं, बहुत लाखों जिसको अपराध कहा गया, अनर्थ कहा गया, कल हमने उसका वर्णन किया। विशेष करके वैष्णव अपराध महा मुश्किल है, सबसे पहले उसको नंबर दिया दस अपराध, रहा सहा भाव भी दूर हो जाए। यदि बिना अपराध के अपराध नहीं किया तो भी भरत महाराज जी उसे दो जन्मों के लिए च्युत हो गए, यदि अपराध होता था तो वो एकदम खत्म हो जाता। अपराध कुछ किया कि नहीं, अपराध इनका नहीं हुआ, केवल आसक्ति उसमें हो गई, इसलिए तो उनका दो जन्म नष्ट हो। और यदि अपराध किसी कारण से हो जाता तब तो वो समूली उठा कर, इसलिए अपराधों से बचने की चेष्टा, यदि वैष्णव अपराध, इसलिए वैष्णव अपराधों के जो जो लक्षण है उसे दूर करना। गुरु के प्रति अवज्ञा भी नहीं होनी चाहिए, गुरु के प्रति अपराध नहीं लिखा, अपराध भी हो जाता है किंतु उन्होंने छोड़ दिया किस लिए। यदि सचमुच में यदि कोई होगा सेवक गुरु से, वो अपराध नहीं करेगा, गुरु की अवज्ञा करेगा, तभी उसको भी अपराध में लिया। अपराध में और अवज्ञा में क्या अंतर? उससे अपराध यदि जान बूझ करती, इसलिए इन अपराधों से बहुत बचना चाहिए। गुरु किसको कहते हैं? जिनके द्वारा यह गुरु भाव परमार्थ में प्रवेश का सुयोग हमको मिल रहा है, उसका हम कोटि जन्मों के ऋणी हैं, इसलिए उनके प्रति कभी भी किसी प्रकार से अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार।
इसमें ये आता है कि वैष्णवों की निंदा करने पर अपराध हो जाए और गुरु जी की अवहेलना भी कर ले तो
सभी अपराध हो जाए। यदि निंदा मत करो, गुरु जी की निंदा आदमी नहीं करता है किंतु बहुत से लोग करते भी हैं, तो उनको समझिए परमात्मा से संपूर्ण रूप से वो बाहर। और जो आदमी निंदा तो नहीं करता है, अवज्ञा भी कर दिया, अवज्ञा मैंने क्या, इनके बिना भी हमारा चल सकता है, बातों बात में अवज्ञा अवहेलना कर, उनकी बात नहीं माना। गुरु त्याग इत्यादि तो बहुत दूर की बात है, वो तो महान से महान अपराध हो जाएगा, गुरु त्याग, गुरु त्याग उसी स्थिति में होगा यदि वो वैष्णव अपराधी हो। निम्न अधिकारी के गुरु को भी नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे हृदय चैतन्य को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी अवज्ञा नहीं थी। गुरु त्याग की तो बात ही यहां नहीं है, उस गुरु के प्रति नहीं त्यागने पर भी वो तो महा 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 अपराध हो गया। और इसमें है यदि अवज्ञा यदि किया, जिनके द्वारा हमारा परमार्थ की भावना बनी, कुछ श्रद्धा आई, कुछ रुचि भी धीरे धीरे आई, हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं और उसके प्रति ही अवज्ञा यदि आ गई, तुच्छ बुद्धि आ गई, उनकी बात नहीं माना, उनके आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ऐसी बात की जैसे उनकी अवज्ञा, वो तो महान है, वो तो नहीं लेंगे। यदि उन्होंने ले लिया अपराध तो वो महान नहीं, वो लोग नहीं लेंगे। किंतु फिर भी शास्त्र में कहा उनकी चरण की धूली उस भाव को नष्ट कर दे। खूब सावधानी से 64 जो अंग हैं इन पर विचार करके हम लोग भक्ति में प्रवेश करें, नहीं तो रही सही मिली हुई चीज भी हाथ से
निकल जाए।
यह है तपस्या। तपस्या माने क्या? ये प्रारंभिक, ये एक प्लेटफॉर्म है और उसके बाद में तब गोपाल मंत्र काम करे, इसको यदि जो प्रदान करना है उसके प्रति कभी भी कोई भाव नहीं। और निश्चिंत रूप से जो हमको कृष्ण मिल ही जाएंगे, आशा बंधा अवसर से इन मंत्रों का जाप करें, इनको राधा कृष्ण का स्वरूप समझो। इसलिए पहले दशाक्षर मंत्र होता था, इसलिए पहले वाला भाग बात दे करके बस गोपियों के प्राण पल्लव स्वाहा बस इतना। अब उसी को देखते हैं कि अनाधिकारी आदमी हो गया ना, अधिकार नहीं है अभी, इसलिए अधिकार देने के लिए और उसमें थोड़ा सा जोड़ करके उनके, जैसे कि बड़ी कठिनता से हम बिना सीढ़ी के कुछ ऊपर जा सकते हैं, तो पहले तो लोग लंबे चौड़े मजबूत होते थे, इसलिए उतनी सीढ़ी की जरूरत नहीं रही थी। 1 फुट ऊंची सीढ़ियां होती थी ना पहले, और अब 6-6 इंची ऊंचाई पर एक एक सीढ़ी, हम लोग ने 6 इंची बनाया। किस लिए बनाया? पहले यहाँ पर थी, तुम लोगों ने देखा 1 फुट ऊंची थी सीढ़ी, हम लोगों ने उसको तोड़वा करके 6 इंची। इसलिए सुगमता से उसको जाने के लिए, उसी तरह से पहले यह दशाक्षर ही मंत्र था, गोपाल मंत्र कहा था, सुगमता के लिए अनाधिकारी व्यक्ति भी इसमें प्रवेश कर सके, इसलिए उसमें और लगा दिया स्पष्टीकरण, नहीं तो वही काफी है। महाप्रभु जी को इतना ही मिला था, माधवेंद्रपुरी जी को इतना ही मिला था, बस स्वाहा उतना ही। और काम गायत्री इस गायत्री की सार है, परिपक्व अवस्था है, वो हमारे हृदय में प्रकृष्ट रूप से प्रच उदय है, उसके लिए प्रार्थना। कैसे उदित होंगे? अनंग है ना, तो कैसे उदित होंगे? उस भाव के साथ में उदित हो, ऐसी भावना यदि हो ना, वो भाव कैसे आएगा कृष्ण में, यदि वो अपनी पूर्णतम शक्तियों के साथ में यदि रहे तो। ऐसे नहीं, ये है इसकी आराधना, इसकी आराधना करने पर ही उनको पास। इसलिए ये लोग भी सूतियों की भांति अथवा मुनियों दुखचरी मुनियों की भांति तपस्या, हम लोग के संप्रदाय के अतिरिक्त ये सब भावना नहीं है कहीं। इसलिए हम लोग अभी जो कुछ कर रहे हैं आराधना पर चल रहे हैं, इसको आराधना समझ करके चलना होगा, तभी यह संभव होगा। कैसा उनका रूप? लावण्य, लावण्य का सार कृष्ण का रूप है, इसका वो गोपियां पान करती हैं छंद भांति से, स्वच्छंद भांति से पान करती हैं। लावण्य मैंने केवल गोरा रहने से ही, गौर वर्ण रहने से ही सुंदर नहीं होगा, श्याम वर्ण भी रहे किंतु मुख पर पानी हो, लावण्य हो, तब उसमें सौंदर्य होता है। बहुत से लोग हैं उतने गोरे नहीं हैं, किंतु मुख पर पानी होता है, लावण्य होता है, तेल जैसा, जैसे कि
मोती
में भीतर से रश्मियां कुछ निकलती हैं, ऐसा होना चाहिए। यदि वो उन्होंने तो रूखा होगा, उसी को कांति कहते हैं। तो उस लावण्य के सार को सब समय वो पीती हैं गोपियां। लवण्यम लवण्यमधिकम वर्तत, किंतु लावण्य सार सारस्य अपि जा सार, लावण्य का भी जो सार है उसका भी सार स्वरूप में एवं ही, उसका स्वरूप ही है, वह कृष्ण का के रूप का स्वरूप ही ऐसा है, लावण्य का सार का भी सार है। ननु श्लोकादिभ्यो अपि न्यूने भूलोके अपि अस्मिन् चेत एवं रूपम दृश्यते। अजी क्या इस जगत में तो ये रूप नहीं होगा, कहाँ होगा, महावैकुंठ में। यदि ऐसा कहो, कहने नहीं ऐसा मत कहो, ये इस पृथ्वी लोक में भी वृंदावन में यह रूप वृंदावन को महावैकुंठ से भी ऊपर समझो, से श्रेष्ठ समझो, ये वृंदावन महावैकुंठ लोके अपि अधिकम मधुरम नारायणस्य रूपम भवेति इति तत्र। एक श्लोक है, श्यामे रमा रमण सुंदरता परिश्य सौंदर्य मोही समस्त जगत जनस्य श्यामस्य बाम्भुज पुरुष कदम कदाहं स्वामी दिरे विरल रूप विरल रूप। ये इंद्रिया कौन सी है, इंदिरा कहाँ रहती है, नारायण, वो इंदिरा से भी कोटि गुण श्रेष्ठ है, महा जो लक्ष्मी, उनके जो पति नारायण है उनसे भी, नारायण से भी श्रेष्ठ है जिनका रूप कृष्ण का है। उसको देख करके वो लक्ष्मी और नारायण दोनों मोहित हो जाते हैं, नारायण भी मोहित हो जाते हैं। जब कृष्ण स्वयं मोहित हो जाते हैं तो नारायण मोहित हो गया तो कोई बड़ी बात,
गोविंद माधुर्य देखे वासुदेव
वासुदेव का खूब हो जाता है, इसलिए ये कोई बड़ी भारी बात। हम लोग का दुर्भाग्य है और हम लोग की ऐसी साधना नहीं है जो हम लोग उस रूप में उनको अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, असंभव। नारायण राम इत्यादि रूपों में भी वह रूप नहीं है, असमोर्थ असमोर्ध सम एव रूपम पापी नास्ति, उनके बराबर ही किसी का रूप नहीं है, स्वयं द्वारकाधीश या मथुरेश कृष्ण का भी नहीं, इसलिए कह रही हैं हम तो मथुरेश कृष्ण का भी रूपान कर रहे हैं और वो भी क्रोध अवस्था में लड़ते हुए, और गोपियां वृंदावन में स्वच्छंद रूप से कृष्ण के असमोद्ध रूप का रूपान कर रही हैं। कैसा रूप वर्णन किया बृहद भगवतामृत में, सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि को कल्पना नहीं है, पद्मा इत्यादि की तो बात ही क्या, कल्पना नहीं कर पा रहे हैं ये कितना सुंदर रूप हो, गोपियां इनको क्यों इतना प्यार करती हैं, और गोपियों को ये प्यार इतना करते हैं ये उनके समझ में नहीं है। कृष्ण ने एक मिनट के लिए उस रूप को वहां पर प्रकट किया, ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट कराया, उस समय कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, जसोदा जी की मूर्ति वहां पर बनाई गई है, हाथों में मक्खन लेकर के खड़ी है, और कृष्ण ने ठुमक ठुमक नृत्य करते हुए पीछे से आकर के थोड़ा सा उसमें चुरा लिया जो मैया को मालूम न रहे, और लेकर के और किस प्रकार से जैसे दो पैर से ऐसे ऐसे करते हुए लड़के चलते हैं उसी रूप में चले। मोर मुकुट हाथ में बंसी, विश्व को विस्मयित करने वाला ऐसा लावण्य साधन था। जबकि आगे बढ़े सखाओं से परवेश उनसे भी आगे बढ़े, जब जिस समय गोपियों को देखा, गोपियों के मध्य में वो जब खड़े होते उसको देख करके रुक्मिणी सत्यभामा सभी मुड़ी, सत्यभामा दौड़ी पकड़ने के लिए। उस समय में रोहिणी मैया और कौन बलदेव, बलदेव जी ने और किस उद्धव उद्धव ने उन लोगों को मना कर दिया, नहीं तो उसी समय में पकड़ने के लिए। इतना सुंदर इसलिए ये भी उसी रूप का चिंतन कर रही हैं। इसलिए उनसे अधिक की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उत्तर ही कृष्णेन तद्रूपम कुतः, अर्थात कृष्ण का यह सुंदर रूप कहां से आया, मैया से प्राप्त हुआ है न कि आभूषणों के द्वारा प्राप्त हुआ, न कपड़ों के द्वारा यह हुआ, न किस रूप या वृंदावन में होने से यह हुआ, नहीं अनन्य सिद्धम अनन्य सिद्धम। तब एक बात है, यह बात थी गोपियों के सानिध्य में वृंदावन के होने के वजह से ही इनका इतना एक बात थी अनन्य सिद्ध होने पर उनका स्वाभाविक रूप है। ननु एवं अपि एतद् रूपम तासद् एक रूपत्वेन पश्यन्ति चेत् तदापि तासां न सत् चमत्कार
न असत्
न
सकृत चमत्कार सतत्र असंकृत चमत्कार।
तो ये कह रहे हैं कि अनसवाद्धि नवम प्रत्येक क्षण उस रूप का ये पान कर रहे हैं। हम लोग किसी
कृष्ण के बहुत से चमत्कार हैं, केवल एक ही बार एक समय में चमत्कार देखा इतना हमेशा निरंतर उनके नव नवायमान रूप में चमत्कार था बोले।
तो एक एक क्षण में एक एक प्रकार से उनका रूप दिखता है अनुभव। पहले एक बार देख लिया, हम लोग किसी रूप को देखते हैं साथ साथ में आगे बढ़ जाते, किसी को देखा मुख देख लिया बस खत्म, आगे बढ़ हमारी उत्कंठा खत्म। किंतु कृष्ण का रूप ऐसा नित्य नवीन रूप में देख, ये भाव के द्वारा होगा, ऐसे नहीं कंस उस रूप को देख करके उसकी उत्कंठा देखने की नहीं होगी, बल्कि उनको मारने की उत्कंठा उसकी। जरासंध इत्यादि उस रूप को देखा किंतु चिंतन नहीं किया उसका, इसलिए कहते हैं अनसवाम प्रतिक्षणम नूतनम एवं च तरही तत्रैव गत्वा अन्य देशीय देशिया भी अपि स्त्री भी सुखेन अयम दृश्यतामिति। इसलिए हम लोग भी वहाँ जा करके अन्य देशियाँ माँ भी
दूसरे देश की स्त्रियाँ भी सुख से देखें
और दूसरी भी देखें, कहते नहीं वहाँ पर जाकर के देखने से भी नहीं होगा, उनका जैसा भाव होना चाहिए भाव से नए नए रूप में वो प्रतिभात होंगे देखे जाएंगे। क्योंकि दुरापह लक्ष्मी इत्यादि के लिए भी बड़े दुर्लभ है, लक्ष्मी को भी वैसे रूप नहीं दिखते। कहने लिए नारायण इत्यादि भी तो भगवान है, उनमें भी श्री है और सुंदरता है, होने से भी सर्वैश्वर्य सब में होने पर भी भगवान के अवतार में होने पर भी अंतिम सीमा अंतिम परिधि इस प्रचंड अंदर। इसलिए छ ऐश्वर्य समग्र बीज जस श्री
ज्ञान
ज्ञान और वैराग्य पर्यनिधि भगवान होंगे, परमेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण हैं। इन्हीं ये एकांत धाम, ये रूप, श्री, जस, ज्ञान, वैराग्य सब इसी कृष्ण में ही संभव है। इस तरह से वो ये भाव आने पर ही कृष्ण का यह रूप देखा जा सकता है। राधा, अब यहाँ पर समापन इस अध्याय को कर रहे हैं, यहीं तक भाव की गति, यहीं तक भाव की गति। अब इसके बाद में आएगा प्रेम की प्रलंब और तब में आएगा मिलन का।